एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपन गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसी भी सच आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसी भी सच। गोरखनाथ महाराज जी होरां पासों बारले मर्दाने पासों अलोप हो जांदा है ते महाराज जी उन्हां नूं दसदे कि सिद्ध लोग इस तरह दुनिया नूं हैरान करते हैं ते हैरान हुई दुनिया उन्हां दे मगर लग जांदी है उन्हां दी पूजा करन लग पैंदी है ते ए लोग इन्हां रिद्धियां सिद्धियां नूं ग्रहण करन विच ही अपना जीवन गुआ बैठते हैं। महाराज जी अगे नूं तुर पैंदे हैं ते मर्दाना आखदा है एक गल आई जे आखें ते पुछां उंज डर भी लगदा है कि पुछां कि ना। महाराज जी कहते मर्दाने तू निशंक होके पूछ। ये जो गुरु और सेवक का रिश्ता परमात्मा ने बनाया है ये है ही पूछन दसन का। तो जे तू ना पूछे तो फिर तेरा औगुण हो सी। गुरु नूं भी चाहिदा है कि वह अपने सिख के सवाल का जवाब दे। ते जिहड़ा गुरु अपने सिख के सवाल का जवाब नहीं देता गुस्सा कर बैठता है वह गुरु गुरु नहीं है ठग है उसनूं छड्ड देना चाहिदा। ते मनुखा दे ही बहुत दुर्लभ वस्तु है कई युगों बाद पाई जाती है तो बहुत सोच समझ के किसी को गुरु धारण करना चाहिए। इस तरह गुरु ने भी वर्जिया है कि वह भी सिख को साध के अपना सिख बनावे हर किसी को नहीं जेड़ा इस रस्ते का पांधी हो उसनू। ये सुन के बाला हस पिया ते मर्दाना कहिंदा जी मैं नहीं पूछना सवाल। महाराज जी कहिंदे मर्दाने तू क्यों नहीं पूछना। कहिंदा बाला गुस्सा करदा है। महाराज जी पूछते भाई बाले तू गुस्सा करदा है। कहिंदा जी नहीं मैं ते तां हसिया सी कि मर्दाना तुहाडे नाल इंज कर रहा है जिस तरह तुहानू जानता ही ना हो जिस तरह पहली बार मिलिया हो। महाराज जी कहते मरदान ने बाला गुस्सा नहीं करता, तू पूछ की पूछना है। मरदाना कहते जी इतों चंद किन्नी दूर है? महाराज जी कहते इतों 2.5 लाख मील है। तो कहता सूरज किन्नी दूर? कहते सूरज चंद्रमा तो भी 4 गुना अगे है। फिर मरदाने ने पूछा कि तारे किन्नी दूर हैं? महाराज जी कहते तारियां की कोई मर्यादा नहीं है, कोई तारा नेड़े है, कोई दूर है, कोई नीवा है, कोई उच्चा है। कई तारे अरबा खरबा पद्मा मील दूर, अरबा खरबा पद्मा मील दूर। तो सब तो उच्चा तारा ध्रुव तारा है। बाला कहता जी ध्रुव तारे थे भी ध्रुव के भी दर्शन कराओगे? महाराज जी कहते जे तू भी तो मरदाना भी चाहे तो जरूर करावे। मरदाना कहता जी हूँ आए हाँ, उच्चिया जगह पर भी दर्शन करने चाहिए। इन्ने चिर उधर की हो रहा है कि गोरखनाथ उड के सिद्धा में जा मिलता है सुमेर पर्वत से। तो उत्थे सारे सिद्धा नु बुला के अपने पास इकट्ठे कर लेता है। कोई सिद्ध हिरन की खल का आसन ला के बैठ जाता है, कोई सिद्ध शेर की खल का आसन ला के बैठ जाता है, किसी ने कई रंगों वाली गोदड़ी अपने तन ते पहनी हुई है। ते इन्हां जोगियां सिद्धां ने बिलौरी मुंदरा अपने कन्नां विच पहनिया हुई हैं, कई ने शरीर ते चिट्टे रंग की सुआह चंगी तरह मली हुई है, कोई दूसरों नू दिखा दिखा के सिंगी बजा रहा है, कई ने हत्था विच वैरागना इस तरह फड़िया हुई हैं कि जिस तरह कोई तोप फड़ी हुए। उन्होंने अंदर का मान इन्ना जाहिर है कि हत्था विचली वैरागन भी तोप लगती है, किसी ने लक नाल पत्थर बने हुए, किसी ने ठूठा फड़िया हुआ। ये सारे सिद्ध इकट्ठे करके गोरखनाथ जी सिद्धा पास इन्हां दी रिद्धियां सिद्धियां ही इन्हां दा मूल मुद्दा हुंदा सी, रिद्धियां सिद्धियां इकट्ठियां करना ग्रहण करनियां। ते महाराज जी दसवें पातशाह जी सवैया विच कहिंदे पारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। कि लोग जिहड़े हुंदे इन्हां दे मनां विच इन्ना गुमान हुंदा, पारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, कि ये पर्वतां नूं खंभ ला के उड़ा देंदे हैं, पर्वतां नूं हिला देंदे हैं पर आप नहीं हिलते, पर्वतां नूं हिला देंदे हैं पर आप नहीं हिलते। इहो जिहियां शक्तियां नूं सोधन महाराज जी जा रहे हैं, जो दुनिया में सब तो वड्डी शक्तियां जिन्होंने प्राप्त कीती हुई हैं। गोरखनाथ सारे सिद्धा नु कहन लगा कि एक नानक नाम का तप्पा इधर नु आ रहा है तुहाडा स्थान देखन, मैं उसनु मिल के आया हाँ। वो बहुत ज्ञानवान कलावान ते बहुत गुणा का भंडार है, तो जिस नाल भी चर्चा करता है, जिस नाल भी ज्ञान गोष्ठी करता है, उसनु हार मननी पैंदी है उसके सामने। कि तुहाडे विच्चों कोई है जिहड़ा उन्नू रस्ते विच ही रोक के ते इत्थे आउण ही ना देवे, उहदे ते शर्त ला दिओ कि जे तू साडे सवाल का जवाब देवे तां साडे स्थान ते जा सकदा है, नहीं ते नहीं। सारे सिद्ध गुमान नाल भरे हुए हैं। मशिंदर जो गोरख का गुरु है वो कहन लगा कि कोई भी होवे मैं जित सकदा, मैं उसनू शरीर के भेदा बारे पूछांगा, योग बारे पूछांगा। ये तो सिर्फ सानू लोगों नू ही पता है शरीर के भेदा बारे योग बारे, वो लाजवाब हो जाएगा। उस मन का मनोरथ मैं इस तरह गाल देंगा जिस तरह गर्मियों में गड़ा गल जाता है। तुसी सारे मैनू आग्या दिओ ते वर दिओ कि मैं उन्हूं जित के आवां। गोरख ने कहा कि उसनूं चेला बनाउणा है, आपां उसनूं चेला बना के चेला बनाउणा है। मशिंदर ने कहा कि तुसी मैनूं वर दिओ मशिंद्रनाथ, तो मैं उसनु चेला बना के इत्थे तुहाडे पास लियावांगा। सारे खुश हैं कि मशिंद्र बहुत तेज सुभा दा है, इहदे नाल चर्चा करनी बहुत कठिन है, इसनु भेजा जावे। मशिंद्रनाथ महाराज जी होरां पास आ के आखदा है, हे बालक तेरा नाम की है ते किधर नू जा रहा है? इधर अगे बहुत खौफनाक है। हे बालक, बालक तो पाव के एवं कोई जिस तरह मुंडा पाक देंदे, हे मुंडिया। वो इसलिए महाराज जी उन्होंने कहते बालके के इन्हों का कोई गुरु नहीं है, तो समझते कि जिहदा कोई गुरु ही नहीं है उन्होंने कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो अजे बालक ही है, वो अजे बालक ही है। महाराज जी कहते साडा नाम ते दुनिया वाले नानक आखते हैं, ते देश साड़ा है सदा दुख सदा सुख देने वाला परमात्मा की शरण, वो साड़ा देश है। ते असी अगे जाना है, असी किसी दे रोकिया नहीं रुकते, साडा जिथे जी चाहे उत्थे जाते हैं। मशिंदर कहन लगा कि उत्थे सारे सिद्ध हैं जिथे तू जाना चाहता है, सारियां दे गुरु हैं, तो किसी नगुरे नू भी मिलना नहीं चाहते। तू पहला गुरु धारण कर, मैं तेनों उपदेश देंदा हाँ, उपदेश लै तो फिर जे राज चाहे, जे राज चाहेगा तो राज मिल जाएगा, जे योग चाहेगा तो योग मिल जाएगा। पहला गुरु वाला बन फिर उत्थे जा सकता है। महाराज जी कहते मछिंद्र जी सानू ना किसी के उपदेश की लोड़ है ते ना राज की लोड़ है और ना योग की लोड़ है। असी जो भी चाहिए करतार पासों बेनती करके ले लेंदे हैं। मछिंद्र नाराजगी होंदी है कि इसने राज नूं जोग नूं ठोकर मार दित्ती। जोगियां नूं कुछ नहीं समझते, जोग नूं कुछ नहीं समझते, गुरु धारण करन दी कोई इच्छा नहीं है। कहन लगा कि जे तू समझता है कि तेनों ज्ञान है तो फिर मेरे सवालों का जवाब दे। जे तू मेरे सवालों का जवाब देवेगा तो तू अगे जा सकता है, नहीं तो इतों ही वापस मुड़ जा। महाराज जी कहते की हैं तेरे सवाल? जे जो सिद्धा नाल गोष्ठी होंदी है बहुत आत्मक मार्ग ते बहुत लाभदायक हन अपने लिए, ते मिस नहीं करना जी कोई दीवान। महाराज जी कहते की हैं तेरे सवाल? कहिंदा मैनू दस के एक दिन ते रात विच प्राणी नू किन्ने श्वास, प्राणी किन्ने श्वास लैंदा है, उसके शरीर विच किन्नियां नाड़ियां हन, उसके शरीर दे जोड़ किन्ने हन, उसके शरीर विच कोठड़ियां किन्नियां हन। कोठड़ियां होंदियां जी जिथे आपां अंदर हवा ठहरा सकीए, श्वास ठहरा सकीए, उस जगह नू कोठड़ी आखते जोगी लोग। ते रोम किन्ने हन शरीर ते, और शरीर के वड्डे हिस्से किन्ने हन, ते कलेजे का की साइज है, कलेजे का की आकार है। महाराज जी कहते एक दिन ते रात विच 24,000 श्वास प्राणी लेंदा है, ते उसके शरीर विच मास विच 900 नाड़ियां हैं, 900 नाड़ियां। बारह वड्डे हिस्से हैं शरीर के, 12 वड्डे हिस्से हैं, और 1600 जोड़ हैं, 1600 जोड़। जे अपन कुछ पता नहीं है कि अपने पास की है, जदों आप चलते हाँ जा बैठते हाँ जा उठते हाँ, तो उन्होंने 1600 विच्चों बहुतियां नूं काम करना पैंदा है, तुरन लग्गिया बैठन लग्गिया उठन लग्गिया, तो उन्होंने 1600 जोड़ां दा इकट्ठे किस तरह किस जोड़ ने मुड़ना, किस एंगल ते किन्नी ताकत दित्ती, आपां नूं कोई पता नहीं। वो परमात्मा करदे हन, आपां सिर्फ उठ जांदे हाँ बैठ जांदे हाँ तुर लेंदे। ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਨੇ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 16-24 ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, 900 ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ, 1600 ਜੋੜ ਹਨ, 72 ਕੋਠੜੀਆਂ ਹਨ, 7.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹਨ, 7.5 ਕਰੋੜ, 12 ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਉਂਗਲਾਂ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਬਸ਼ਿੰਦਰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮਛਿੰਦਰ ਦਾ ਮਾਣ ਪੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਰੀਪਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸਨੇ ਗੋਰਖ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਗੋਰਖ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਰਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਬਤ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਰੀਪਾ ਸਿੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਬਾਲਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ। ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੇ ਬਾਲਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਓ ਬੈਠੋ। ਲੋਰੀਪਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਰੀਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੂਲਾਧਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲਾਧਾਰ, ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੜ੍ਹ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਰੀਪਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 6 ਚੱਕਰ ਹਨ ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਸਰਜਿਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲਾਧਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁੰਡਲਾਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀ, ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਆਖਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲਾਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੰਡਲਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਜੀਏ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੰਡਲਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ।